आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक आज लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने स्टाम्प पेपर को लेकर मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है।
10,000 से लेकर 25,000 तक के मूल्य के वर्ग के भौतिक स्टाम्प जो निष्क्रिय चलन से बाहर घोषित करने हैं, तो व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है। ये मैटर काफी दिनों से पेंडिंग था, इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अब ई स्टाम्प के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा हो सकेगी।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे, उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 एजेंसियों द्वारा प्रदेश भर में लगभग 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 14.05 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। यह भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। बलिया जिले के मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर किया जाएगा। राज्य स्मार्ट सिटी योजना को 2 साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। ये योजना गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए लागू होगी। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे चरण की अनुपूरक अनुदान मांग पेश की। बजट सत्र का ये चरण 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट और खेल के सामान का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। आज प्रदेश के सभी प्रमुख सनातन धर्मस्थलों पर रंगभरी एकादशी मनाई जा रही है। रंगभरी एकादशी के पर्व पर आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में उत्सव का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर आज बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का गौना परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ किया गया। सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ माता गौरी की पालकी महंत आवास से लोकाचार के बाद विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलकर रंगोत्सव का शुभारंभ करते हैं। रामनगरी अयोध्या में भी रंगभरी एकादशी पर आज होली पर्व का विधिवत शुभारंभ हो गया। हनुमानगढ़ी परिसर में रंगों के बीच आस्था का ज्वार दिखा। इस अवसर पर साधु संतों ने हनुमानगढ़ी के निशान के साथ जुलूस निकाला। अयोध्या के मंदिरों में साधु संतों ने देव विग्रहों के साथ होली खेली। उधर पहले से रंगोत्सव में डूबी मथुरा में भी रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। होली पर्व पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक जोड़ी विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर से आज से 31 मार्च तक सोमवार और गुरुवार को चलेगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल से कल से 1 अप्रैल तक मंगलवार और शुक्रवार को ये गाड़ी चलाई जाएगी। बस्ती जिले के नगर थाना अंतर्गत लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह ट्रक और कार की सीधी टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।